नमस्कार भारत, 26 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। गोलान हाइट्स पर अमेरिका की नीति बदली, ट्रंप ने दी इसराइल के अधिकार को मंजूरी, सीरिया नाखुश, नेतन्याहू ने कहा शुक्रिया।
इज़राइल विल नॉट टॉलरेट दिस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस।
हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण पर छिड़ी बहस के बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बीबीसी से कहा भारत न दे हमें सबक।
पाकिस्तान की हुकूमत उन बच्चियों के साथ खड़ी हुई है जिनके साथ जुल्म हुआ है, जबकि भारत में ये होता है कि वो जुल्म करने वालों के साथ खड़े होते हैं।
और भारतीय वायुसेना में शामिल चिनूक हेलीकॉप्टर क्यों माने जा रहे हैं खास?
हिंदुस्तान के जो बॉर्डर हैं वो बहुत लंबे हैं चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है, चिनूक के आने से कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। इसराइल ने सोमवार को एक रॉकेट हमले की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। सोमवार को हुए इस हमले में 7 लोग घायल हो गए थे। इसराइल की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि हमले में हमास के नेता इस्माइल हानिया का कार्यालय नष्ट हो गया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस समय ये हमला हुआ वो इमारत में मौजूद नहीं थे। हमास का कहना है कि युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन इसराइल की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। ईरान में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस बाढ़ में ईरान का ऐतिहासिक महत्व वाला दक्षिण शहर शिराज सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पानी का सैलाब इतना तेज है कि गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक तक बह गए हैं। सोशल मीडिया पर बाढ़ से जुड़े कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इन वीडियो में कारों को, ट्रकों को बहते हुए साफ देखा जा सकता है। एक अन्य फुटेज में लोगों को लैम्प पोस्ट की तरफ लपकते हुए देखा जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। शिराज शहर के एक निवासी कौरेश आरा ने बीबीसी को बताया कि स्थिति इसलिए ज्यादा भयावह हो गई क्योंकि दुनिया भर से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक नया साल मनाने के लिए जुटे हैं। उन्होंने बताया,
For Shiraz, it's a target for many travelers. It's a historic city. It's one of those.
नए साल के मौके पर दुनिया भर के पर्यटक यहाँ जमा होते हैं। ये एक ऐतिहासिक शहर है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ लोग एक या दो दिन की छुट्टी होने पर भी घूमने चले आते हैं। इस वजह से इस समय यहाँ शहर में मौजूद लोगों की संख्या सामान्य से बहुत अधिक है, इसलिए मुश्किल भी ज्यादा हो रही है और मदद करने में भी परेशानी आ रही है। ये थे कौरेश आरा के शब्द। सूडान की राजधानी खार्तूम में दर्जनों की संख्या में पत्रकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। मार्च के आयोजकों का कहना था कि दिसंबर से लेकर अभी तक करीब 90 पत्रकारों को सरकार विरोधी बताकर हिरासत में लिया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना था कि सूडान के अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन की कवरेज को रोकने की कोशिश की, यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट शेयर करने में रुकावट डाली। सूडान के एक नामचीन पत्रकार ओथ मैथ मरघनी को पिछले महीने राष्ट्रपति उमर अल की आलोचना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ओथमैन के रिश्तेदारों का कहना है कि वो अभी भी हिरासत में हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मोजाम्बिक में तूफान के बाद आपातकालीन शरण स्थल बनाए गए थे, लेकिन इन जगहों की स्थिति भयावह बताई जा रही है। रेड क्रॉस और रेड क्रिंसेंट का कहना है कि पानी से होने वाली गंभीर बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए तेज और उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रिया की जरूरत है, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। बचाव कार्य से जुड़े एक आला अधिकारी का कहना है कि उन्होंने एक जगह का दौरा किया जहां से एक स्कूल में करीब 3,000 लोगों ने शरण ले रखी है, जबकि स्कूल का कुछ हिस्सा अब भी पानी में डूबा हुआ है। इस महीने की शुरुआत में आए चक्रवाती तूफान इदई की वजह से अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक क्षेत्रीय दुर्घटना प्रबंधक डॉक्टर थायरो वाल्दे ने बीबीसी को बताया कि इस चक्रवाती तूफान ने आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, स्थिति बहुत ही भयावह है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ओर से कोई कमी न छोड़ें। प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये थे क्षेत्रीय अधिकारी के शब्द। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। इसराइल और सीरिया के बीच लंबे वक्त से विवाद की वजह बनी रही गोलान हाइट्स यानी गोलान पहाड़ियों को लेकर अमेरिका ने अपनी नीति बदल दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में इससे जुड़े दस्तावेज पर दस्तखत किए। सीरिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता भूमिका राय से।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन पहाड़ियों को इसराइल के क्षेत्र के रूप में मान्यता देने वाले आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने इस बात के संकेत कुछ दिन पहले ही दे दिए थे। 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के दौरान इसराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चल रहा था। इसराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनिया भर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी। व्हाइट हाउस में जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उस समय इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी वहां मौजूद थे। उधर सीरिया ने ट्रंप के इस कदम को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला बताया है। गोलन क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख हायम रोखा ने इस मौके पर कहा, गोलन पहाड़ियां हमेशा से इसराइल का हिस्सा थी। आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा और उसके बाद आज्ञा पत्र पर उनके हस्ताक्षर के बाद ये बात और पुख्ता हो गई है। गोलन इसराइल का ही था और हमेशा रहेगा। हालांकि जिस समय इस बात की घोषणा हुई उससे कुछ वक्त पहले ही गजा में फलस्तीनी हमला हुआ था। इस दौरान व्हाइट हाउस में एक संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा, इसराइल किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसराइल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अपने लोगों के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम वो करेंगे। इसराइल पर हुए हमले के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस हमले से साफ पता चलता है कि इसराइल के लिए अपनी सुरक्षा करना कितना अहम है। ट्रंप ने कहा,
The despicable attack this morning demonstrates the significant security challenge.
आज हुए हमले ये साफ साफ बताते हैं कि इसराइल किस तरह हर रोज अपनी सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहा है, और इस स्थिति में जो मैंने आज फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है। गोलन की पहाड़ियां इसराइल की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी बीबीसी संवाददाता भूमिका राय। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक संदिग्ध हमलावर ने एक मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बचने में कामयाब रहे। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि संदिग्ध हमलावर ने मस्जिद की दीवार पर न्यूजीलैंड के हमले का जिक्र करते हुए कुछ लिखा भी है। पूरी रिपोर्ट सुनिए सलीम रिजवी से।
रविवार को सुबह तड़के कैलिफोर्निया के सैनडिएगो शहर के एक्सकॉन्दिडो इलाके की पुलिस को इमरजेंसी फोन कॉल आई कि दारुल अरकाम मस्जिद में आग लग गई है। मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने आए लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन किया था, जिसमें कहा गया कि लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी है। जब मौके पर पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मचारी पहुंचे तो मस्जिद की एक दीवार जल गई थी। पुलिस का कहना है कि मस्जिद में आग लगाने वाले संदिग्ध हमलावर ने दीवार पर लिखी गई कुछ बातों में न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर हमले का भी जिक्र किया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों में शामिल यूसुफ मिलर को यकीन नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड में आतंकी हमले के बाद इतनी जल्दी उनकी इस मस्जिद पर भी हमला किया गया। हमले के समय 7 नमाजी मस्जिद में मौजूद थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई है। अब पुलिस इस मामले को नफरत से प्रेरित हमला करार दे रही है। अभी हमलावर या हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन अब अमरीकी जांच संस्था FBI भी इस मामले में जांच कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस मामले में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस द्वारा इलाके में मस्जिदों की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। न्यूजीलैंड में हमलों के बाद अमरीका में रहने वाले मुसलमानों में भी हमलों के खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है। रविवार को ही न्यूयॉर्क में करीब 2000 मुसलमानों ने नफरत से प्रेरित हमलों के विरोध में प्रदर्शन भी किया।
Down with white supremacy!
Down with white supremacy!
I hate failed ideas!
एक प्रदर्शनकारी शाहिद ने कहा कि अमेरिका में आम लोग नफरत नहीं चाहते।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो है उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, ये होती है स्टेट्समैनशिप। हमारा ट्रंप जो है वो ये देखता है कि मेरे मुल्क के लिए अच्छा है कि मैं व्हाइट सुप्रीमिस्ट और रेसिज्म को फैलाऊं, जो कि उसका एजेंडा होगा। मगर ये अमेरिकन सिटीजन का एजेंडा नहीं है।
एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार सन 2017 में अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में 15% बढ़ोतरी हुई है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों जबरन धर्मांतरण को लेकर बहस जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान की दो हिंदू लड़कियों के कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी कराए जाने की खबर सामने आई। इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के बीच ट्विटर पर नोकझोंक भी हो चुकी है। बीबीसी उर्दू संवाददाता सहर बलोच ने पाकिस्तान के सूचना मंत्री हुसैन से बात की और सबसे पहले पूछा कि उनकी सरकार जबरन धर्म बदलने के मुद्दे को कैसे देखती है।
देखिए, कुरान हमारा सुप्रीम लॉ है। कुरान पाक में है कि ला इकराहु फिद्दीन, दीन के ऊपर जो है वो कोई आपका जबर आप नहीं कर सकते, और जो जबर के साथ दीन का कन्वर्जन होगी वो नहीं होगी। जब से इमरान खान ने पाकिस्तान में हुकूमत संभाली है, नया पाकिस्तान की जब हमने बुनियाद रखी है, हमारा मामला बिल्कुल वाज़े है। हमारे झंडे का सफ़ेद रंग है वो भी हमें उतना ही मोहतरम और अजीज़ है जितना हमारे झंडे का सब्ज़ रंग। अकलियतों के लिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो इस कदर ज़्यादा है कि अभी हाल ही में पंजाब में हमने अपने एक सीनियर वज़ीर को इस बात के ऊपर उनके ओहदे से ही अलहदा कर दिया कि वो उन्होंने एक बयान दिया जिससे एक हमारी जो अकलियत है उसकी और हिंदू अकलियत जो है उसकी दिल आज़ारी हुई। तो हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़े है इसके ऊपर, और मेरा ख्याल है कि जब से हमने हुकूमत संभाली है कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमने जो लॉ की इन्फोर्समेंट है वो सिलेक्टिव की है।
आपने ट्वीट किया सुषमा स्वराज के हवाले से कि इनको जो है नहीं बोलना चाहिए पाकिस्तान के मामला में, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मोदी को जो है वो ताना कस रहे थे कि आपके तो मुल्क में जो है वो नहीं है सही, तो ये किस तरह से फिट हुई?
मेरी पूरी ट्वीट ये थी कि बहुत खुशी की बात है कि सुषमा स्वराज जो है उनको दूसरे ममालिक में अकलियतों के ऊपर होने वाले सलूक के ऊपर उनको एहसास है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो अपने मुल्क से ये मामला शुरू करें जहां और खसूसन जम्मू और कश्मीर और गुजरात में जो अकलियतें हैं वो उनकी खसूसी तवज्जो की मतकाजी हैं। सो बुनियादी तौर के ऊपर मैंने तो वेलकम किया कि उन्होंने अच्छा किया कि उनको दूसरे मुल्कों में एहसास है, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। सो अगर सुषमा स्वराज अपनी अकलियतों के लिए भी वही जज्बात रखें जो बाकी ममालिक की अकलियतों के लिए रखती हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान का जो रवैया है वो दो रुखा है। वो अपनी अकलियतों के लिए मुसलमानों के साथ वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, मसीहों के साथ जो जुल्म हो रहा है, और तो छोड़िए जो बुद्ध के मत के मानने वालों के साथ जो सलूक हो रहा है, वो तो भारत का चेहरा सबके सामने है। वो हमें ये नहीं बता सकते, हमें ये सबक नहीं दे सकते। हमारे यहाँ देखिए वाकयात हर जगह होते हैं, जरायम हर जगह होते हैं, देखना ये होता है कि रियासत कहाँ खड़ी है। क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरह ऑपरेसर के साथ खड़ा है या वो विक्टिम के साथ खड़ा है? फ़र्क जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की हुकूमत उन बच्चियों के साथ खड़ी हुई है जिनके साथ जुल्म हुआ है, जबकि भारत में ये होता है कि वो जुल्म करने वालों के साथ खड़े होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रवैये में।
ये थे पाकिस्तान सरकार के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन। रुख भारत का। भारतीय वायुसेना के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। वायुसेना के बेड़े में 4 चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हो गए हैं। वायुसेना को कुल ऐसे 15 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। ये हेलीकॉप्टर क्यों अहम माने जा रहे हैं, हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने यह सवाल किया रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी से।
ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, भारत ने 15 खरीदे हैं, अभी 4 ही शामिल हुए हैं एयरफोर्स में, मगर जब ये पूरे 15 आ जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स की जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है, सामान, एम्यूनिशन, आर्टिलरी, टैंक्स, लाइट टैंक्स, उनको इधर से उधर ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। और हिंदुस्तान की जो टेरिटरी है, हिंदुस्तान के जो बॉर्डर हैं, वो बहुत लंबे हैं चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो इसकी जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो बहुत जरूरी है, और चिनूक के आने से ये लिफ्ट कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी।
सर, हम भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज की जब भी बात करते हैं तो तुलना पाकिस्तान से करते हैं। और हाल के दिनों में जैसे देखा भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच जो है एक संघर्ष भी दिखा, तो क्या आपको लगता है कि ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स मिलने के बाद जो इंडियन एयरफोर्स है उसका एज, उसकी धार थोड़ा बढ़ जाएगी?
नहीं नहीं, ये धार बढ़ाने के लिए नहीं है। इनके चिनूक हेलीकॉप्टर के दो मकसद हैं, एक तो मिलिट्री है और दूसरा अगर जब डिजास्टर मैनेजमेंट है, जहां आपका फ्लड आ गया या आपका कोई भूचाल आ गया या आपकी कोई इमरजेंसी हुई, एनवायरमेंटल इमरजेंसी, उसमें भी ये शामिल हो सकते हैं। मगर ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ को बराबर करने के लिए नहीं लिया गया। ये एक इनका बेस चंडीगढ़ में रहेगा जो दिल्ली से कोई लगभग 250 किलोमीटर है, और एक बेस इनका असम में रहेगा अरुणाचल के पास, जहां वो चाइनीज बॉर्डर की तरफ उनका इंप्लॉयमेंट होगी, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। तो ये दोनों तरफ ये 15 हेलीकॉप्टर ये दोनों बेसिस में बांटे जाएंगे। और भारत ने जब ये साइन किया था 2015 में चिनूक हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये भी लिखा था कि 7 और भी ले सकते हैं। तो ये अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, मगर 7 और हेलीकॉप्टर लेने की प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट में।
सर, हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके का हेलीकॉप्टर होता है ये, क्या खास बात होती है इसकी, बाकी जो सैन्य हेलीकॉप्टर हैं या सिविल हेलीकॉप्टर हैं उनसे कैसे अलग होता है ये?
ये हेलीकॉप्टर जो है ये लगभग 10 टन का वेट उठा सकता है, लगभग 40 से 50 फुल बैटल गियर में सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसका जो नीचे से एक विंच सिस्टम होता है, जहां नीचे ये आर्टिलरी या लाइट टैंक को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जैसे वो एक विंच सिस्टम होता है उसका, तो उसमें इसकी बहुत कैपेबिलिटी है। और ये काफी, इसके दो, जैसे नॉर्मली हेलीकॉप्टर के एक रोटर होता है, इसके दो हैं, एक आगे है एक पीछे है, और ये बहुत पावरफुल मशीन है। और ये इसकी जो हाइट है वो लगभग 20,000 फुट तक जा सकती है, और ये काफी एजाइल है, ये काफी तंदुरुस्त हेलीकॉप्टर है जो काफी जगह में जा सकता है, जहां उसको ये पहाड़ों में या कोई वैलीज में जाना पड़े उसको, तो ये बड़ी आसानी से जा सकता है। तो एक बहुत कैपेबल मशीन है।
ये थे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ राहुल बेदी। और अब आज के अखबारों के बाद भूमिका राय के साथ। जी भूमिका
जी, वात्सल्य, चुनावी खबरों की बात करें, चुनावी खबरों से ही शुरुआत करते हैं। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है कि बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी टिकट नहीं दिया है। अखबार का दावा है कि इसका खुलासा खुद जोशी ने मतदाताओं के नाम जो दो लाइन का एक पत्र जारी किया उसमें किया है। दैनिक हिंदुस्तान की एक और खबर है जिसे हिंदू अखबार ने भी पहले पन्ने पर लिया है कि जेट एयरवेज से नरेश गोयल के बाहर होने की बात है। उसमें उनकी पत्नी और उन्होंने दोनों लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अलग हो गए हैं। जेट एयरवेज पे 26 बैंकों का 8 करोड़ रुपये का कर्ज है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जेएनयू कुलपति और छात्रों के बीच गतिरोध की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार ने यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी पत्नी को बंधक बना करके रखा। हालांकि जो छात्र हैं वो इन बातों को बेबुनियाद और झूठा बता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की पहले पन्ने की खबर की बात करूं तो ये काफी अहम खबर है। पाकिस्तान ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में शारदा मंदिर गलियारे को भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां। बात से लीजिए
जी। बहुत शुक्रिया भूमिका राय अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल ऐलान किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबों को सालाना 72,000 रुपए की आय मिलना तय करेगी। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस दावे पर सवाल उठा रही है। हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात की और पूछा कि वो अपना वादा कैसे पूरा करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के बारे में भाजपा के लोग ये सदियों से सवाल उठाते आए, दशकों से। जब हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसे करेंगे। जब हम आरटीआई लेकर आए तो इन्होंने कहा ये लागू कैसे करेंगे। जब हमने एमजी नरेगा से गरीबी पर सबसे बड़ा प्रहार किया तो कहा कि 40,000 करोड़ यानी 10 साल में 4,00,000 करोड़ कहां से आएगा। जब गरीब के लिए, किसान के लिए 72,000 करोड़ रुपए की लोन वेवर स्कीम लेकर आए तो कहा कि 72,000 करोड़ कहां से आएगा। और ये सब हमने करके दिखाया क्योंकि हम कांग्रेस हैं, हम जुमलेबाज पार्टी नहीं। और इसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में ये स्कोप है कि 20% गरीब परिवारों को 72,000 रुपया सालाना दिया जा सके। मोदी जी 3,17,000 करोड़ 15 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, तो हम देश के 5 करोड़ परिवारों यानी 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपया सालाना दे सकते हैं।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिलनवाज पाशा को उस गणित की जानकारी नहीं दी जिसके मुताबिक वो गरीब परिवारों को दी जाने वाली रकम का इंतजाम करेंगे। अर्थशास्त्रियों की अगर बात करें तो उनकी नजर में इस रकम का इंतजाम करना कितनी बड़ी चुनौती है। हमारी सहयोगी कीर्ति दुबे ने यह सवाल किया आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा से।
अगर मैं बहुत ही बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करूं तो लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर आप इसे अपने 2019-20 का बजट देखें तो लगभग 27.84 लाख करोड़ का बजट है, 3.6 में देखूं तो वो लगभग 12.9 या 13% बनता है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो लगभग वो 2% बनता है। ये सुनने में बहुत अभी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि क्या ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की बात थी क्या उसका एक स्वरूप ये है। ये अभी बहुत सारे डिटेल्स इसमें नहीं आए हैं लेकिन जो शुरुआती डिटेल्स आए हैं मुझे लगता है कि एक दांव खेला गया है और आर्थिक रूप से इस दांव के पीछे सारे सवाल उठ सकते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे फायदे को देखें तो चूंकि पिछले समय में तमाम ऐसी योजनाएं जो हैं उन्होंने वोट दिलाने में मदद करी है तो शायद ये एक दांव है कांग्रेस का कि लोगों से हम किस तरीके से वोट हम ले सके।
एक अहम सवाल ये भी है कि इन ऐलानों की पूर्ति के लिए बजट कहाँ से आएगा और ये कितना संभव हो पाएगा।
अगर आप ताजा हिसाब की आप देखेंगे सब्सिडी का लगभग 35 तरह की सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार मुहैया कराती है जिसपे खर्च 3,34,000 करोड़ रुपए का 2019-20 के बजट में है। अब जब यहाँ पे आप जिस स्कीम की बात करें उसमें अकेले का खर्च उस स्कीम का 3,60,000 करोड़ का है तो अर्थशास्त्र क्या कहता है कि जब आप इस तरह के एश्योर्ड इनकम स्कीम को लाते हैं तो आपको जो दूसरी सब्सिडीज हैं उनको आपको खत्म करनी चाहिए। सब्सिडी बहुत ही राजनीतिक तौर पर एक संवेदनशील मुद्दा है और आप यहाँ पर आपने लक्ष्य किसको रखा है, गरीबों में गरीब जो 20% हैं यानी कि 5 करोड़ परिवार हैं, जबकि बाकी परिवारों को जिनको सब्सिडी मिल रही है क्या हम उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दें। मौजूदा अगर मैं गणित देखूं, मौजूदा जो समीकरण देखूं, उसमें तो यही लगता है कि एक साथ क्या सारे सब्सिडी को खत्म करके सिर्फ इसको लागू किया जाए तभी आपके पास पैसे का इंतजाम हो सकता है, या आप ज्यादा उधारी करें तो आपके लिए परेशानी अलग है, और या फिर आपकी टैक्स से ज्यादा कमाई हो। मुझे लगता है कि इन तीनों के बीच में एक संतुलन बिठाने की कोशिश होगी तभी जाकर के आपके लिए 3,60,000 करोड़ रुपए का इंतजाम जो है वो हो सके।
ये थे शिशिर सिन्हा। कांग्रेस को रकम की चिंता के पहले लोकसभा में बहुमत हासिल करने की फिक्र जरूर होगी। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर गठबंधन को बागी उम्मीदवारों की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पार्टियों को इस दिक्कत की काट खोजने में क्या मुश्किलें आ रही हैं बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
ये उत्साही भीड़ की आवाज कर्नाटका के मंड्या में कल सुनने को मिली जब मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के बेटे निखिल गौड़ा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गए। मंड्या जिले के समर्थक हजारों की तादाद में ये संदेश देने के लिए आए थे कि वह दिवंगत नेता और कन्नड़ा फिल्म के बड़े कलाकार अम्बरीश की पत्नी से डर नहीं गए हैं। सुमलता अम्बरीश कांग्रेस की टिकट मांग रही थी लेकिन गठबंधन की वजह से टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय उम्मीदवार बन गई हैं। लेकिन हर किसी को पता है कि उनको उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल है जो जेडीएस के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि निखिल गौड़ा के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने टुमकुर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मंड्या जैसे ही उत्साही भीड़ से कहा, आपके समर्थन से हम लड़ेंगे, किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि मैं 86 साल का हूँ। हम दिखाते हैं कैसे हम लड़ेंगे। हमने संकल्प लिया है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ेंगे। हमने किसी समुदाय को नुकसान नहीं पहुँचाया है। ये थे एचडी देवेगौड़ा के शब्द। देवेगौड़ा का भाषण सिर्फ जेडीएस के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए भी था जो उनका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के सांसद एसपी मुद्दे हनुमे गौड़ा ने भी अपना नामांकन पत्र एक बड़ी रैली निकालकर दाखिल किया। मुद्दे हनुमे गौड़ा एक ही कांग्रेस के सांसद हैं जिसको अपने ही क्षेत्र से फिर से लड़ने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उनकी पार्टी ने सीट जेडीएस को दे दी। कांग्रेस के नेताओं ने बेंगलुरु उत्तर सीट का प्रस्ताव किया लेकिन मुद्दे हनुमा गौड़ा ने कहा, देखिए हम टुमकूर के सांसद हैं और हमने यहाँ काम भी किया है। हमारा कोई हक नहीं होता कि हम किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ें। हम उतने बड़े नेता नहीं हैं कि हम बैंगलोर उत्तर से चुनाव लड़ें। ये थे मुद्दे हनुमा गौड़ा के शब्द। दरअसल जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन नेताओं के स्तर पर शायद ही मजबूत हो, लेकिन जमीनी स्तर पर पिछले तीन दशकों के चुनावों की करवाहट कम नहीं हुई है। जहां भी देवेगौड़ा और उनके दो पोते चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता गठबंधन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या देवेगौड़ा और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कितने हद तक अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में ला पाएंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इसे लेकर पार्टी को आंतरिक घमासान का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पिछले 7 बार के सांसद रहे रमेश बैस को इस बार पार्टी ने टिकट लायक नहीं समझा। केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को भी पार्टी ने टिकट नहीं दी। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की टिकट भी पार्टी ने काट दी। लेकिन रमेश बैस, विष्णुदेव साय या अभिषेक सिंह ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत कर आए अपने 10 में से किसी भी सांसद को इस बार टिकट नहीं दी है। पार्टी ने राज्य की सभी 11 सीटों पर एकदम नए चेहरे उतारे हैं। माना जा रहा है कि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 15 सालों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को 90 में से महज 15 सीटें मिली, उससे भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पाई है। लेकिन पार्टी के इस निर्णय से सभी 11 सीटों पर बगावती तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ऐसी किसी स्थिति से इनकार कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय और कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व दिया गया है। जब 10 के 10 लोकसभा में वर्तमान सांसदों को रिप्लेस किया गया है, तो निश्चित रूप से उनके बदले में भी जो आ रहे हैं वो एक बेहतर प्रत्याशी के हिस्से से।
लेकिन कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने के इस दावे के बीच हर दिन बगावत की खबरें आ रही हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का दावा है कि सभी नाराज लोगों को मना लिया जाएगा।
सबसे बात चर्चा चल रही है, सब मान जाएंगे, सबसे चर्चा हो रही है, पूरी सब ठीक ठाक होगा और हमारा लक्ष्य है कि हम 11 से 11 जीते, इसके लिए हमारा पूरा तैयारी चल रही है।
राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सभी 10 सांसदों की टिकट काटकर भाजपा ने अपनी हार तय मान ली है।
चौकीदार जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 10-10 चौकीदारों को टिकट काटा है, खुद भी चौकीदारी कर रहे थे लेकिन चुनाव न अपने बेटे लड़ा रहे हैं उसे स्पष्ट हो गया है, न खुद लड़ रहे हैं न अपने बेटे को लड़ा रहे हैं इसे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सफाया छत्तीसगढ़ से हो चुका है।
छत्तीसगढ़ में भाजपा के सभी 10 सांसदों की टिकट काटने के पीछे की राजनीति को जानने समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विक्रम सिंघल से बात की।
पिछले 4.5 सालों में पहली बार भाजपा को मतों के हिसाब से बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। किसी भी बड़े राज्य में कांग्रेस को 2/3 बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा कभी नहीं मिल पाया। ये पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। 5 वर्षों में पहली बार अपने हिस्से के मतों में भारी कमी, 8.5% की कमी, और वहीं पिछले 30 वर्षों में पहली बार कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत जो कांग्रेस के सबसे बुरे दौर में आई है। इन दोनों चीजों ने मिलकर बीजेपी की जो केंद्रीय संगठन है उसके आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया।
इस प्रश्न चिन्ह का सही सही जवाब और उसका परिणाम क्या होगा, इसके लिए तो चुनाव के नतीजे तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने तो अभी सबसे बड़ी चुनौती बागियों से निपटने की होगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और आपको बता दें कि कल आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रन से मात दी। आज दिल्ली में दिल्ली और चेन्नई की टीमें आमने सामने होंगी। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। इसराइल ने सोमवार को एक रॉकेट हमले की जवाबी कार्रवाई में गजा पट्टी पर हवाई हमले किए। सोमवार को हुए इस हमले में 7 लोग घायल हो गए थे। वेनेजुएला की राजधानी काराकास और इसके अलावा 12 दूसरे राज्यों में एक बार फिर बिजली कटौती हो गई है। अभी 1 सप्ताह पहले ही ब्लैकआउट की स्थिति के बाद ये दूसरा मौका है। थाईलैंड के निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा का कहना है कि हाल में हुए आम चुनावों में धांधली हुई है। उनका आरोप है कि सैन्य सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए हेरफेर किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।